हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 21। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम कथम सपुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अगर आप श्लोक को देखें, श्लोक क्रमांक 19 और श्लोक क्रमांक 21 मिलते जुलते लगते हैं। पहले वाले श्लोक में भगवान एक अज्ञानी पुरुष के बारे में बता रहे हैं, 19वें श्लोक में, जो वो व्यक्ति है जो सोचता है कि जीवात्मा मर जाता है या उसको मारा जा सकता है या मैं किसी जीवात्मा को मारता हूँ या कोई मुझको मारता है। यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है, जो जानता है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा का जन्म नहीं होता है, तो इसी कारण से, और आत्मा शाश्वत है, इस कारण से आत्मा को मारना असंभव है। तो धर्म परायण क्यों नहीं होगा ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, इस अर्थ में बोला जा रहा है। यहाँ पे ज्ञानी व्यक्ति का बारे में बता रहे हैं, 19वें में अज्ञानी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो देखते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो धर्म का आचरण करने में नहीं चूकेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी है। ये अर्थ है इसका तात्पर्य। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। हम लोग चर्चा कर रहे थे और अभी यही बात प्रभुपाद जी हम लोग से सुन रहे हैं हम लोग, कि यहाँ पे ज्ञानी व्यक्ति का निरूपण हो रहा है। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और उसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद यहाँ पे दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने किसी का मर्डर कर दिया है, तो फिर उसको प्राणदंड दिया जाता है जज के द्वारा, यानी जज भी बाह्य दृष्टि से उस व्यक्ति का प्राण को हर रहा है, लेकिन जज पे प्राण दंड नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो न्याय संहिता के अनुसार कार्य कर रहा है। तो कार्य वही है, लेकिन अगर कार्य को धर्मशास्त्र के अनुसार व्यक्ति करता है तो उसे कोई पाप, कोई दंड नहीं लगता है। ये बहुत सुंदर उदाहरण हम इससे समझ सकते हैं। लेकिन एक और एग्जाम्पल है कि कोई गुंडा किसी के पेट में चक्कू मार देगा, व्यक्ति मर जाता है, और डॉक्टर भी चक्कू चलाता है, ये सर्जन जो है वो चक्कू चलाता है, लेकिन उसको करने उस कार्य को करने के लिए दोनों लोगों को पैसे भी मिलते हैं। जो चोर है उसको भी पैसे मिलते हैं चक्कू चलाने के लिए, पैसे प्राप्त कर लेता है छीन के या कैसे भी करके, लेकिन उसको चोर मानते हैं, उसको दंडित किया जाता है जब वो मिलता है। डॉक्टर छुरी चलाता है, उसकी फीस होती है, बड़ी मोटी फीस होती है, लेकिन उसके प्रति लोग कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि वो छुरी चला करके वो एक व्यक्ति की जान बचाने का प्रयास करता है, जान बचती है, क्योंकि वो उसको उस छुरी को चलाना ठीक से जानता है। ये कहना चाहिए छुरी को किस उद्देश्य के लिए ठीक से चलाना चाहिए ये जानता है। ठीक से चलाना भी दोनों जानते हैं, लेकिन किस उद्देश्य के लिए ठीक से चलाना जानते हैं उसका बहुत फर्क पड़ जाता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनुसंहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझ कर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसके स्वास्थ्य बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है उससे पाप फल की संभावना नहीं है। तो पाप का मूलभूत कारण है जब व्यक्ति शास्त्र के अनुसार कार्यों को ना करे। जैसे लोग कहते हैं कि भक्त लोग भी तो सब्जियां खाते हैं, शाकाहारी लोग भी तो सब्जियां खाते हैं, क्या उनको पाप नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन जब हम उसी शाक सब्जी को भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो न सिर्फ हमको पाप नहीं लगता है, बल्कि जो पूर्वगत किए गए पाप और दुष्कर्म हैं और जो सुकर्म हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस बात को गीता में भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं कि अगर जो भी आप खाते हैं, जो भी करते हैं, जो भी दान देते हैं, तपस्या करते हैं, वो मेरे लिए करते हैं, तो फिर आप शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको समझ में, जो व्यक्ति समझदार है वो इस बात को समझेगा कि जिस प्रकार से सर्जन का शल्य क्रिया के लिए छुरी का उपयोग करना और एक गुंडे के द्वारा छुरी का उपयोग करने में अंतर है, उसी प्रकार से एक भक्त के द्वारा क्रिया करने में और एक भौतिकतावादी व्यक्ति के द्वारा क्रिया करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। और उसका अंतर क्यों है? क्योंकि भक्त एक योगी शास्त्र में वर्णित नियमों के अनुसार अपने कार्यों को दिशा देता है और उसका उद्देश्य भी होता है कृष्ण की प्रसन्न करना। हरे कृष्णा।